हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अमन और आंशी साथ में घर जा रहे थे। वैसे भी आज उनका दिन काफी हेक्टिक बीता था। सुबह आंशी का अचानक एजेंसी ऑफिस जाकर विधिक्की के पास जाने का बम फोड़ना, तो बाद में दिव्याना की डेड बॉडी एजेंसी ऑफिस आना, इन सब के चक्कर में अमन और आंशी दोनों ही परेशान थे। ऊपर से एजेंसी ऑफिस से निकलते वक्त लावण्या ने आंशी को काफी भला बुरा कहा था, इस वजह से आंशी का मूड ऑफ था। घर आते वक्त रास्ते में आंशी ने अमन से एक शब्द भी नहीं कहा था, इससे वो समझ गया था कि आंशी उससे नाराज है। घर पहुंचते ही अमन ने घर को अच्छे से लॉक किया और फिर आंशी के साथ अंदर आया। अंदर आते ही आंशी सीधे रूम में जाने लगी, तभी अमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, वहां तो इतना मैच्योरिटी से बिहेव कर रही थी कि एक पल के लिए मुझे तुम पर प्राउड फील हो रहा था, यहाँ आते ही तुम्हारा बचपना फिर से शुरू हो गया। आंशी ने अमन की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, मैं अपनी तरफ से कितना भी अच्छा क्यों ना कर लूं, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आएगा, तुम्हारी आदत हो गई है मुझमें कमियां निकालने की। यू नो व्हाट, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड परफेक्ट लगती है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं दूसरों का बॉयफ्रेंड चुराने वाली, तुमने उसे कहा क्यों नहीं, कैसे वो मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। आंशी का गुस्सा अमन पर फूट पड़ा, मुझे उसे जो कहना था वो कह दिया था, खुद को शांत रखो, हमें बैठकर बात करनी चाहिए, चलो चेंज करो, तब तक मैं खाने को कुछ बना लेता हूँ, अमन ने काफी शांति से कहा। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी, वैसे भी उसे काफी भूख लगी थी। अमन किचन में चला गया तो वहीं आंशी रूम में थी। उसने चेंज किया, अपने बालों को सही करते हुए आंशी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, देखा जाए तो मैं काफी लकी हूँ, ये पूरा दिन काम करके आता है फिर भी मेरे लिए खाना बना रहा है, फिर भी हार नहीं माननी है आंशी, बिहेवियर वाइज अच्छा है तो क्या हुआ, एटीट्यूड तो इसमें कूट कूट कर भरा है। वहीं अमन किचन में खाना बनाते हुए खुद से बड़बड़ा कर बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि मेरी हेल्प करे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा काम बिगाड़ ही देती है, बाकी चीज़ों में ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसका बचपना है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अमन और आंशी अलग अलग थे, फिर भी एक दूसरे की शिकायत खुद से ही लगाए जा रहे थे। खाना बनने के बाद अमन ने आंशी को आवाज़ लगाई, बाहर आ जाओ आंशी, और एटलीस्ट डाइनिंग टेबल पर खाना तो सर्व कर दो। आंशी अमन के पास आई और कुछ नहीं बोली, वो खाना डाइनिंग टेबल पर लेकर जा रही थी। इस बीच अमन बाथरूम में गया और फ्रेश होकर वापस आया। अमन और आंशी ने साथ में खाना खत्म किया और फिर अमन ने आंशी को बात करने के लिए रूम में आने को कहा। वो दोनों बेड पर आमने सामने बैठे हुए थे। अमन कुछ कहता उससे पहले आंशी झट से बोल पड़ी, शुरुआत कल रात से होगी, तुमने अपनी एक्स को गोली मारी थी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने ड्रिंक की, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना गम भुलाने के लिए तुमने मुझे यूज किया और सुबह कितनी आसानी से सॉरी बोलकर चले गए, यहाँ मैं पागल कितनी सारी चीज सोच कर बैठी थी कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो, तुम्हें भी मेरे करीब आना है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। आंशी पहले गुस्से में बात कर रही थी, लेकिन बोलते हुए वो थोड़ी इमोशनल हो गई और उसकी आवाज़ भारी होने लगी। अमन ने आंशी का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाया और सहलाते हुए कहा, तुम सच में पागल हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें टाइम दे रहा था, वरना मुझे तुम्हारे करीब क्यों नहीं आना होगा, अब बस मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे साथ मैंने अपने स्पेशल मोमेंट को अच्छे से फील नहीं किया, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। आंशी अमन से अलग होकर बोली, ठीक है फिर वादा करो कि जितने दिन तक मैं यहाँ पर हूँ तुम मुझे अच्छे से पैम्पर करोगे, मेरा ध्यान रखोगे और मैं जो चाहूँगी वो मुझे दोगे। बोलते हुए आंशी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि अमन उसे प्रॉमिस कर सके। अमन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आंशी के हाथ पर रख दिया। आंशी को प्रॉमिस करते हुए अमन ने कहा, तुम जो कर रही हो वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब अगर विधिक के खिलाफ जाने की ठान के लिए है तो प्लीज अपने कदम पीछे मत लेना और एक पल के लिए भी कमजोर मत पड़ना। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी। आंशी के हाँ कहते ही अमन ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखे। एक लंबा किस करने के बाद अमन ने किस ब्रेक करते हुए कहा, कल रात मिस कर दिया तो क्या हुआ, आज पूरे होश में हूँ, मैं आए। आगे बढ़ने से पहले किसी भी जेंटलमैन की तरह अमन ने आंशी की परमिशन मांगी, जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाकर हामी भर दी। आंशी के हाँ कहते ही अमन उसके करीब आया। अगले ही पल दोनों बेड पर थे। अमन और आंशी अपने प्यार भरी दुनिया में खोए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ विधिक का काम हो चुका था। वो वापस चंडीगढ़ आने के बजाय दिल्ली के ही किसी होटल में रुका था। विधिक ने अपने लिए खाना मंगाया और खाते हुए शाहिद से कॉल पर बात कर रहा था। इतने दिनों के बाद उसे सुकून महसूस हो रहा था। शाहिद कॉल पर बोला, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा बॉस, क्या सच में आप ये काम छोड़ दोगे? सब यहाँ आपसे डरते हैं, आपकी अलग ही पहचान बनी हुई है। इतना सब कुछ पाने के बाद कोई ये सब कैसे छोड़ सकता है? पूरी तरह नहीं छोड़ूंगा शायद, लेकिन किसी की जान भी नहीं लूंगा। इंसान अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ सकता। अगर थोड़ा बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ अपनी बटरफ्लाई के लिए। मुझे बस अब अपने होटल का काम देखना है। बाकी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में क्या होता है वो बताने के लिए मेरे पास बहुत से लोग मौजूद हैं। विधिक ने सर्द लहजे में जवाब दिया। वो शाहिद से बात कर रहा था तभी उसके मोबाइल पर हरलीन का भी कॉल आया। विधिक जल्दी से बोला, बुआ का कॉल आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये खबर सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, बाकी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अब मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई वास्ता नहीं होगा। मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से मेरी अब तक की बनाई पोजीशन नीचे आए। शाहिद को सब कुछ समझाने के बाद विधिक ने हरलीन का कॉल रिसीव किया। क्या आंशी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है विधिक? हरलीन ने सीधे सीधे पूछा। हाँ बुआ, को तैयार है, और आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने भी ये सब कुछ छोड़ दिया है। अब मैं कुछ दिनों में आपके पास उसे लेकर आ रहा हूँ। आई प्रॉमिस बुआ, हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे और मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। विधिक ने हरलीन को सब कुछ बता दिया। विधिक के लिए आंशी के बाद कोई मैटर करता था तो वो हरलीन थी। हरलीन भी उसके इस फैसले को जानकर खुश हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब बस तुम दोनों के यहाँ आने का इंतजार है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद विधिक ने कॉल कट कर दिया। अब वो बिल्कुल अकेला था। उसने खुद से कहा, तैयार हो जाओ बटरफ्लाई, आई होप तुमने मेरी बात मान ली होगी। अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ये तुम पर भारी पड़ सकता है। प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गलतियों को माफ करूंगा। तुम मेरा फायदा कभी नहीं उठा पाओगी और ना ही उठाने दूंगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरी वही इनोसेंट बटरफ्लाई बनकर मेरे पास आओ, ना कि उस सीक्रेट एजेंट की वाइफ बनकर जो मुझ पर जासूसी करने के लिए मुझ तक आ रही है। विधिक काफी स्मार्ट था और उसे धोखा देना इतना आसान नहीं था। वो आंशी के मामले में भी काफी सतर्क था। भले ही आंशी से विधिक ने कितना भी प्यार क्यों ना करता हो, लेकिन उसे उस पर पूरी तरह यकीन नहीं था।
अगली सुबह अमन और आंशी की आंख खुली तो वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। उनके कपड़े पूरे रूम में बिखरे थे। आंशी ने उठते ही मुस्कुराते हुए अमन की तरफ देखा और फिर शर्माकर अपनी नजरें नीचे कर लीं। उसकी इस हरकत पर अमन ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम ना पूरी ड्रामा क्वीन हो, चलो अब जल्दी से उठो, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट है और इस मामले में तुम पर 1% में रहम नहीं होने वाला। लेकिन मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ऊपर से मेरी बॉडी में पेन भी हो रहा है। रात को तुम्हारी वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई थी, तो थोड़ी देर तो सोने दो, आंशी मासूम चेहरा बनाकर बोली, जिस पर अमन ने ना में सिर हिला दिया। अमन ने आंशी के फॉरहेड पर किस किया और फिर उसने हाथ बढ़ाकर अपने कपड़े उठाए। कपड़े पहनने के बाद अमन बाथरूम में जा रहा था और जाते वक्त उसने तेज आवाज में कहा, हरी अप आंशी जिंदल, बहुत शौक है ना तुम्हें उसे विधिक राणा के पास जाने का, अब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग किसे कहते हैं। अमन के जाने के बाद आंशी जैसे तैसे उठी और अपने कपड़े पहने वो दूसरे बाथरूम में तैयार होने के लिए चली गई। कुछ ही दिन में अमन और आंशी दोनों रेडी हो चुके थे। अमन आंशी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था तो वही आंशी लिविंग रूम में बैठकर मजे से टीवी देख रही थी। अचानक चैनल चेंज करते हुए आंशी की नज़र न्यूज़ चैनल पर पड़ी। टीवी में कल रात शिवम चतुर्वेदी की हुई मौत की न्यूज़ आ रही थी, साथ ही उसके किए घोटालों की वीडियो भी वायरल हो रही थी। आंशी ने आवाज़ लगाकर अमन को बुलाया। उसे न्यूज़ को देखने के बाद अमन ने आंशी की तरफ देखकर कहा, तो वो शिवम चतुर्वेदी था जिसने विधिक राणा को वो काम दिया था। कहते हैं बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन वो उसे इस तरह डिस्ट्रॉय करेगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा, खुद उसने भी नहीं। शिवम चतुर्वेदी एक बड़ा नाम था जिसके मरने का सबको झटका सा लगा। थम, अमन ने आंशी के चेहरे की तरफ देखा तो उस पर घबराहट के भाव थे। उसने अमन की तरफ देखकर धीरे से कहा, उसने अपना काम इतना जल्दी कर दिया, इसका मतलब वो यहाँ वापस आ जाएगा अमन, और मुझे अपने साथ ले जाएगा। तुम लोगों को जो करना है जल्दी ही करना होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आंशी की बात सही थी। पहले उन्हें लगा था कि विधिक ने आंशी को लगभग एक हफ्ते के करीब टाइम दिया था और उसके बाद ही वो अपना काम करेगा, लेकिन विधिक ने जल्द ही अपना काम निपटा दिया था। इससे ये बात साफ थी कि उसे जल्द से जल्द आंशी को अपने करीब लेकर आना था।